بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب دجال 2 عالمی دجالی ریاست ابتدا سے انتہا تک ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف مفتی ابو لبابا شاہ منصور ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-218-225۔ دجالی ریاست کی کہانی، پہلی قسط، نقطۂ آغاز و اختتام۔ دجالی ریاست کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے، پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارض مقدس فلسطین سے ہوتی ہے، یعنی یہود کی فلسطین سے جلاوطنی سے، جو عذاب الہی کے نتیجے میں تھی، اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی، یعنی یہود کی یہاں واپس کی کوشش، جو مکر و فریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا نقطۂ آغاز و اختتام فلسطین ہی سے کرتے ہیں، جس کا قدیم نام یروشلم تھا۔ یروشلم 3 مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے۔ واقعہ معراج بھی یہیں سے ہوا تھا، اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق اور لگاؤ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء، بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے، اسی لیے یہودی بھی اسے مقدس و متبرک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرزمین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض قدس میں گزارا۔ مستقبل کی عالمی دجالی ریاست کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جنم لے گی۔ یروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لیں، آئیے اس کی تخریب، یعنی یہاں دجالی قوتوں کی کارفرمائی کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے تورات کی پیشگوئی کے مطابق، اس پیشگوئی کا ذکر دجال نامی کتاب میں بحوالہ موجود ہے، جب بیت المقدس فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095 عیسوی میں عیسائیوں کا اس وقت سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ اربن دوم تھا۔ اس نے عیسائی پوپ یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ کو تنگ کر دیا ہے۔ خود مسیحی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے قتل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس جھوٹ کا ایک طے شدہ مقصد تھا، سیاسی اور بشارتی جھوٹ۔ مذکورہ پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ پر ابھارنے کے لیے صرف یہی سیاسی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک بشارتی جھوٹ بھی بولا۔ اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت وضع کی، جو مسلمانوں سے لڑے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جنت کی بلند و بالا وادیوں میں دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ جھوٹ، جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات یعنی نظریہ کفارہ کے بھی منافی تھا، گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال تھا۔ ان کو یہ بات سمجھنا آتی تھی کہ مسلمان اتنے ناقابل تسخیر کیوں ہیں اور اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن اور اس کے اہم اثر دیگر مسیحی عمائدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے فلسفہ شہادت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکیں؟ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کر لیں۔ عیسائی عوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کوز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹوں کے گناہ کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں۔ اب صلیب کے بیٹوں کو اپنا خون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے اعتراف گناہ کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ صلیبی جنگ یا نسلی مار کا آرائی، بہرحال اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام یقینی نجات کے حصول کے لیے جوق در جوق کافروں سے نکلنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی و شام میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سپاہیوں نے تہدیق کیا اور بچ رہنے والوں کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگوں نائٹس یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے القدس پر طوفانی یلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقے میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے نہ صرف ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور ابھی تک مختلف شکلوں اور عنوانوں سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کر ان پرفتنہ دجالی قوتوں کو تہ تیغ نہیں کریں گے۔ جو سادہ لو عیسائی عوام کو اہل اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں، اس حملے کو صلیبی جنگ کہا گیا جس کا مطلب کافروں یعنی مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ اسے بعض اہل قلم مسیحی جہاد کہتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جہاد کے مقدس عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں کے لیے یہ اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اس عبادت کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے نائٹس یعنی ان یورپی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگزاری سناتے ہوئے ہمیں یہ بتاتی ہے، راستے میں وہ مسلمان، یہودی اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ نائٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو ایک نسلی مار کا آرائی تھی۔ وہ نسلی مار کا آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جو نسلی احساس برتری کے شکار بنی۔ اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کی اس مقدس خطے پر تسلط دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدامالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔ خوفناک خواب، دہشتناک تعبیر۔ یہ صلیبی جنگیں جاری رہیں اور جیسے جیسے وقت گزرا صلیبی جنگوں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح نائٹس کی تعداد اور حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ और इनमें ईसाई जोशीले सरदारों की जगह यहूदी जुआमा ने लेना शुरू कर दी और यहीं से ये तहरीक रुख बदल कर दज्जाल के कारिंदों के हाथ में आती गई। नाइट्स के नाम और खुतबात मुख्तलिफ थे जो उनके तारुफ पस मंजर और फराइज के हवाले से रखे जाते थे। इनमें से एक नुमाया गिरोह टेम्पलर्स नाइट्स का था जो ईसाई नाइट्स के मुख्तलिफ गिरोहों के खत्म हो जाने के बाद भी बाकी रहा। इस ग्रुप ने तारीख में बेइंतहा शोहरत पाई और आज तक नाम बदल कर जिंदा है, इसलिए कि ये ईसाई ना थे, शुरू में थे भी तो बाद में इनमें एक मखसूस इंसानी बिरादरी के लोग शामिल हो गए जिन्होंने ये चोला पहनकर शोहरत दवाम हासिल की। टेम्पलर्स नाइट्स माबदी सरदार एक ऐसा गिरोह था जिसके सामने बजाहिर कोई मकसद और कोई नस्बुलैन नहीं था, लेकिन दर हकीकत उनके सामने एक बड़ा नस्बुलैन और अहम एजेंडा था जिस पर वो सलीबी जंगों की मदद से काम करने लगे। उनकी नजरों में पूरी दुनिया पर गलबे का हुसूल और अजीम तरीन फरमा रवाई थी। अगर सवाल उठाया जाए कि थोड़े से लोग जो मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस ना ले सकते थे, पूरी दुनिया पर फरमा रवाई का ख्वाब कैसे देख रहे थे, तो इसका जवाब समझने के लिए हमें उनकी बुनियाद और पस मंजर को तफसील से देखना होगा। उनके इस ख्वाब ने दुनिया को बहुत सी आजमाइशों में डाला और उनकी इस अहमकाना मुहिम के नतीजे में इंसानियत बहुत सी आजमाइशों में मुब्तिला हुई और ये आजमाइशें आज भी जारी हैं। आगे चलकर ये गिरोह मजहबी तंजीम से बढ़कर मुआशी इजारादारी कायम करने वाला गिरोह बना। फिर मुआशी तौर पर मुस्तहकम ये गिरोह दुनिया की सियासत में दखील होकर बादशाहगर बन गया। पसे पर्दा रहते हुए दुनिया की हुकूमतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना इसका मखसूस हुनर ठहरा। इसके बाद इसका रुख अस्करियात की तरफ हुआ। यहूद की तारीखी रवायती तारीख के हवाले से ये खुद मैदान में आकर कभी नहीं लड़ा, ये दूसरों को लड़वा कर फतह के समरात अपनी झोली में डालने का आदी रहा है। लिहाजा दुनिया की इक्तसादियात, सियासियात और अस्करियात पर कंट्रोल कायम करके ये इस ख्वाब की तकमील के लिए जुट गया जिसकी ताबीर इंतहाई खौफनाक है, यानी इबलीस की आलमी हुक्मरानी का क्याम और दज्जाल की आलमी रियासत की तश्कील। हम इस गिरोह की दर्जा बदर्जा पेश कदमी मजहब से मईशत, मईशत से सियासत यानी जमहूरियत, सियासत से अस्करियत और फिर आलमी हुकूमत का जायजा लेते हुए आगे चलेंगे। यानी जमहूरियत और इंसानियत के खिलाफ माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल करीब में जो कुछ इस जेर जमीन पनपने वाले गिरोह ने किया खुलकर सामने आ सके और वक्त हाथ से निकलने से पहले इस गैर इंसानी बल्कि शैतानी मंसूबे के रास्ते में मजबूत रोक खड़ी करी जा सके। इसकी तारीख सामने सामने आमने से ये सवाल भी हल हो जाएगा कि दज्जाल तो यहूदियों की उम्मीद का आखिरी सहारा है। सलीबी जंगजुओं का इस यक चशम यहूद नवाज फितने के नाम पर कायम होने वाली रियासत से क्या ताल्लुक हो सकता है, जारी है। नाइट टेम्पलर्स से फ्री मैसन तक दूसरी किस्त। हैकल के खंडर के करीब। अगरचे अर्ज मुकद्दस पर मसीही इकतदार मुख्तसर अरसे के लिए था, लेकिन उनका ये मुख्तसर कब्जा पूरी दुनिया की तारीख को तब्दील करने वाला हादसा साबित हुआ। इस मुख्तसर अरसे के दौरान नाइट्स की एक खसूसी तंजीम तश्कील दी गई जिसका मकसद बज़ाहिर मसीही जायरीन को मुसलमानों के हमलों से महफूज रखना था। ये एक मजहबी तंजीम थी जिसके फराइज में मुकद्दस माबद बैतुल मुकद्दस हैकुल सुलेमानी को काफरों यानी मुसलमानों से बचाना भी शामिल था। चुनाचा ये तंजीम और इसके अरकान दुनिया भर के ईसाइयों के लिए काबिल एहतराम बन गए। अपने मजहबी फराइज और मसीही तर्ज हयात की वजह से उन्हें राहिब कहा जाता था। बाद अज़ां ये खिताब तर्क करके उन्हें टेम्पलर्स यानी माबदी कहा जाने लगा। टेम्पल माबद यानी इबादत गाह को कहते हैं। टेम्पलर का मतलब हुआ माबद यानी इबादत गाह से वाबस्ता खुफिया गिरोह। ये तंजीम बहुत जल्द मुनज्जम अस्करी तंजीम बन गई और नाइट्स टेम्पल्स टेम्पलर्स माबदी सरदार कहलाने लगी। पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ रिलीजन्स में नाइट टेम्पल्स के बारे में कुछ इस तरह तहरीर है। एक मजहबी अस्करी तंजीम जो 1119 ईस्वी में यरूशलम में तश्कील दी गई जिसका मकसद मसीही जायरीन को मुसलमानों के हमलों से महफूज रखना था। ये माबद यानी हैकले सुलमानी के खंडर के करीब रहते थे। इनकी बूदोबाश राहिबों जैसी थी लेकिन इनकी सरगर्मियां बुनियादी तौर पर अस्करी और इंतजामी थीं। अर्ज मुकद्दस में यूरोपी सलीबी सल्तनत की निगहदाश्त में अहमियत रखने के साथ साथ इनकी इमलाक यूरोप में भी थी और वो बैनुल अक्वामी बैंकारों की हैसियत से भी काम करते थे। वो अपने दाखिली उमूर सख्त राजदारी के साथ सरंजाम देते थे। मुकद्दस तबर्रुकात के मुहाफिज इस तंजीम के बाकायदा कयाम के हकीकी अगराज के बारे में मुख्तलिफ दास्तानें पाई जाती हैं। शुरू में इन्होंने अपने आप को हैकल का मुहाफिज कहलवाया। सवाल यह है कि ये लोग किस चीज का तहफ्फुज़ कर रहे थे और किससे कर रहे थे। इस नुक्ते पर कुछ मुहक्किकीन राय रखते हैं कि टेम्पलर्स इनकी तादाद 12 थी, दरअसल किसी खजाने या मुकद्दस तबर्रुकात की हिफाजत कर रहे थे जो बैतुल मुकद्दस या हैकल सुलेमानी से मिले थे। कदीम जमाने में जब यहूदी यरूशलम में आकर आबाद हुए तो वो हजरत मूसा अलैहि सलाम का संदूक भी साथ लाए थे जिसे बाद अजां हैकल सुलेमानी में रखा गया। इस संदूक को ताबूत सकीना या ताबूत यहूद कहा जाता था और इसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात की तख्तियां अलवाहे तौरात रखी गई थीं। अहदनामा कदीम यानी तौरात का कहना है यह ताबूत खालिस सोने का बना हुआ था। अहदनामे में इसकी शक्ल सूरत और लंबाई चौड़ाई की तफसीलात मौजूद हैं। अहदनामे के मुताबिक इस संदूक या ताबूत में वो असल अलवाह तख्तियां मौजूद थीं जो कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई। इसके अलावा हजरत हारून अलैहि सलाम का आसा, कुरान करीम के मुताबिक यह हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा था और मन और सलवा का बर्तन भी इसी ताबूत में महफूज था। तारीख तो ये बताती है कि उसे हैकल सुलेमानी में रखा गया था लेकिन ये नहीं बताती कि बाद अजा इसके साथ क्या हुआ। टेम्पलर्स के दौर में हैकल सुलेमानी का ये हिस्सा जायरीन के लिए कुछ अरसे तक मरम्मत के नाम पर ममनू करार दे दिया गया था। एक रिवायत के मुताबिक 9 साल और दूसरी के मुताबिक 13 साल। इस दौरान इसे टेम्पलर्स ने किसी मखसूस खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था या खुद टेम्पलर को भी ये तबरुकात हाथ ना लगे और वो दुनिया को धोखा देने के लिए खुद को पुरेसरार मशहूर किए हुए हैं। रिवायात मुख्तलिफ हैं और इस हवाले से मशहूर मजहबी दास्तानों में जबरदस्त तारुस पाया जाता है। हकीकत यह है कि कदीम टेम्पलर्स हों या जदीद फ्री मैसन, यहूदी कौम के रूहानियन यानी सिफरी जादूगर हों या दज्जाल के खुरूज के मुंतजिर यहूदी रुबाई, इन सब सब में से किसी को भी नहीं मालूम कि मुकद्दस तबर्रुकात कहाँ हैं। वो इनकी तलाश में सरगर्दा हैं कि इनको दुनिया पर दोबारा गलबा इनके बगैर नहीं मिल सकता, लेकिन ये तबर्रुकात उनको मिल के नहीं दे रहे और ना ही ये उनको कभी मिलेंगे। उन्हें तो हजरत मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु बरामद करेंगे। कहाँ से? इस सवाल का जवाब दज्जाल नामी किताब में दे दिया गया है। हजरत के हाथों उनकी बरामदगी देखकर वो मोतदिल मिजाज यहूद जिनकी किस्मत में ईमान है मुसलमान हो जाएंगे और वो शक्की मिजाज यहूदी जो इन तबर्रुकात को हजरत मूसा अलैहि सलाम के हाथ में देखकर भी उनकी अतात करने में ली तो लाल कर रहे थे, वो अब भी दज्जाल के साथ रहने पर ही अड़े रहेंगे और फिर बिलाखिर इसके साथ अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचेंगे। नाइट टेम्पलर्स और सूदी बैंकारी। तबर्रुकात के मुहाफिजीन के तौर पर सलीबी दुनिया में मजहबी हैसियत मुस्तहकम करने के बाद टेम्पलर्स को, जो दर हकीकत मौजूदा फ्री मैसन तंजीम की सबका शक्ल थे, अपनी माली हैसियत मुस्तहकम करने और इसे मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने की फिक्र सवार हुई। अवाम की तिजोरियों में महफूज दौलत जिसे हर वक्त लूट लिए जाने का खतरा दरपेश रहता है, से बेहतर वो कौन सा जरिया हो सकता था जो दूसरों के माल पर मुफ्त का ऐश करने का आदि कौमे यहूद के काम आता। पैसा अवाम का, मेहनत सरमायाकारों की और बीच में मुफ्त के मजे यहूदी सूदखोर महाजनों के। यहूद की सूदखोराना जहनीयत के हवाले से इससे बेहतर क्या सूरत हो सकती है कि सरमाया किसी और का हो और नफा यहूदी सूदखोर को मिलता रहे। चुनाचा ये वो लम्हा था जब दुनिया में सूदी बैंकारी का आगाज हुआ। इसकी इब्तदा यहूदी सर्राफों ने की। सर्राफों यानी सुनारों ने दुनिया के सामने सबसे पहले तिजोरियों लॉकर्स का निजाम मुतारिफ कराया। उन्होंने लोगों के जेवरात, सिक्के और सोना उजरत लेकर महफूज करना शुरू कर दिया। हिफाजती नुक्ता नजर से ये डिपॉजिट सिस्टम लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत जल्द मकबूल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता यहूदी सर्राफों ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली पैदा की। लोग जब सोने के सिक्कों के अवज कोई चीज खरीदते थे तो पहले यहूदी सर्राफों को रसीद दिखाकर अपना सोना लेते थे, फिर उसे उस शख्स के हवाले करते जिससे उन्होंने कुछ खरीदा होता। बेचने वाला इस सोने को फिर किसी यहूदी सुनार के पास रखवा कर रसीद ले लेता। रसीद बनाने और सिक्के जमा कराने का ये अमल यकसानियत और तवालत रखता था। इसका हल यहूदी साहूकारों ने ये निकाला कि हिफाजत के लिए अपनी तहवील में रखे गए लोगों के सोने को दूसरे लोगों को फरोख्त करते हुए उसे अमलन पुराने मालिक को वापस करके फिर नए मालिक से लेकर तहवील में रखने के बजाय एक्सचेंज चिट यानी तबादले की तहरीरी याददाश्त मुतारिफ कराई गई, यानी रसीदों पर लेन देन शुरू हो गया। तबादले के इस निजाम से सोना एक दफा वसूल करने और फिर उसे दोबारा जमा कराने का झंझट खत्म हो गया। कागजों के ये पुर्जे करेंसी नोटों, ट्रेवल्स चेकों और क्रेडिट कार्डों की बुनियाद है, और वो वक्त दूर नहीं जब कई इलेक्ट्रॉनिक्स करेंसी की शक्ल में वाहिद आलमी जरिया तबादला मुतारिफ हो जाएगा। नाइट टेम्पलर्स और सूदी बीमा। अगला मरहा हुंडी या बीमे का है। कुछ लोगों को दूर दराज का सफर तय करना पड़ता था। सफर के दौरान उन्हें अपने और अपने कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। टेम्पलर्स ने लोगों के खाली हाथ सफर करने लेकिन इसके बावजूद दौलत एक से दूसरी जगह ले जाने का महफूज तरीका वजह किया। टेम्पलर्स एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वसूल करके उन्हें एक चिट जारी करते थे जिस पर कोड वर्ड्स दर्ज होते। इन कोड वर्ड्स को सिर्फ टेम्पलर्स ही समझते थे। दूसरे शहर जाकर लोग ये चिट वहां के टेम्पलर्स को देते और उनसे मतलूबा मालियत का सोना चांदी या करेंसी वसूल कर लेते। इन चिटों पर ग्राहक का नाम, पता और पिछले शहर में जमा कराए गए सोने या चांदी की मालियत वगैरह दर्ज होती थी। कुछ ही अरसे में जमा कराए गए सोने डिपॉजिट्स को अर्जी के तौर पर जारी करना शुरू कर दिया गया। हालांकि हिफाजती तहवील में पड़े हुए सोने की शर्त ये थी कि वो इंदु तलब मालिक को लौटाया जाएगा। मालकान चूंकि अरसे दराज तक अपना सोना वसूल करने के लिए नहीं आते थे, उनका काम चिटों से चलता था। इसलिए अपने पास पड़े बेमसरफ सोने का ये मसरफ ढूंढा कि उसे सूदी कर्ज के तौर पर लोगों को देकर सूद कमाया जाए। सोना किसी और का था, इस पर सूद कोई और भर रहा था और मुफ्त में मौज वो लोग कर रहे थे जिसका हवस जदा दिमाग इस तरह के शैतानी मंसूबे सोचने का माहिर था। अलगर्ज जब सर्राफों ने देखा कि उनके पास जमा कराए जाने वाले सोने की सिर्फ मामूली मकदार मालकान निकलवाते हैं, चुनाचा उन्होंने इसमें से कुछ सोना दूसरों को सूद पे आरियतन देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो असल रकम और सूद के लिए एक प्रामिसरी नोट या दस्तावेज लिखवा लेते। इस तरह वक्त के साथ साथ कागजी सर्टिफिकेट जिनके बदले सोने के सिक्के लिए जा सकते थे गर्दिश में आ गए। इससे पहले लेन देन के लिए सिर्फ सोने के सिक्के गर्दिश में रहते थे। शुरू में ये सर्टिफिकेट या नोट जमा शुदा सोने की मालियत के बराबर होते थे। फिर हुआ ये कि गर्दिश में रहने वाले नोटों की मालियत जमा शुदा सोने की मालियत से ज्यादा हो गई। सूदी बैंकारी का पहला मॉडल। सरमाया महफूज करने, कर्जा देने और जमानत हासिल करने का ये कदीम तरीका आज के जदीद बैंकारी निजाम की बुनियाद बना। टेम्पलर्स मजहबी पसे मंजर रखने की वजह से लोगों के लिए काबिले भरोसा थे। तमाम यूरोपीय ममालिक यहाँ तक के मशरिक वस्ता और अर्ज मुकदस में उनकी शाखें और दुनिया भर में उनके नुमाइंदे मौजूद थे। यूरोप की निशात सानिया में हिस्सा लेने वाले दौलतमंद खानदानों, मसलन फ्लोरेंस इटली के मेडिक्स खानदान ने भी इस निज़ाम की अयानत की और रफ्ता रफ्ता ये निज़ाम तरक्की करके बाकायदा मुस्तकिल इदारे यानी बैंक की शक्ल में वजूद में आ गया। पहला मॉडर्न बैंक स्वीडन का दी रक्स बैंक 1656 ईस्वी में वजूद में आया। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में सूदखोरी के मुनज्जम इदारे की शक्ल में कायम कर दिया गया। 17वीं सदी ईस्वी के अंग्रेज सर्राफों ने दुनिया को सूदी बैंकारी का मॉडल मुहैया कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सूदी लानत के इस जाल में फंस कर रह गई। मुकामी बैंक मरकजी बैंक से और मरकजी बैंक आलमी बैंक से मुंसलिक हो गया और इस तरह दुनिया की मईशत इन लोगों के हाथ में आ गई जो दज्जाल के खुरूज से पहले हर तनफ्फुस के सीने में हराम का लुकमा पहुंचाते या उसकी ताक में रहते ताकि हराम के आलमी सौदागर का जब जहूर हो तो और इबलीसी हराम खोरों के लिए मैदान हमवार हो चुका हो। सूद से टैक्स तक। बाइबल की तालीमात सूद की ममानियत करती हैं, चुनाचा इस जमाने में ईसाई मुआशरों में भी सूद से गुरेज किया जाता था। लेकिन टेम्पलर्स, मुकद्दस समझे जाने वाले टेम्पलर्स, इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं करते थे। वो ना सिर्फ कर्जों पर सूद वसूल करते, बल्कि ये भारी शरह के साथ सूद आयद करते थे। ये एक मौके पर एक कर्जदार को 60% तक सूद दर सूद अदा करना पड़ता। कदीम जमाने में मुनज्जम बैंकारी निजाम के साथ ये लोग अपने दौर के जदीद सरमायाकार बन गए। अवाम तो अवाम, हुकूमतें तक इनसे कर्जा लिया करती थीं। ये मनमानी शराइत पर उन्हें सूदी कर्ज दिया करते थे। बहुत सी बादशाहतें इनके कर्जों के बोझ तले दबकर खत्म हो गईं। बकिया यूरोपीय ममालिक को तो रहने दीजिए, अंग्रेज हुक्मरान खानदान भी टेम्पलरों का मकरूज था। बादशाह जॉन, हेनरी सोम और एडवर्ड अव्वल सभी टेम्पलरों से कर्जा लेते थे। 1260 ईस्वी से 1266 ईस्वी के दरमियान बादशाह हेनरी ने अपने ताज के हीरे टेम्पलरों के पास रहन रखे हुए थे। मुख्तलिफ बादशाहों को मकरूज करने के बाद टेम्पलर्स आगे बढ़े। हुक्मरानों के ताजों में जड़े हीरे गिरवी रखने के बाद अब वो आवाम को भी अपने पास गिरवी रखना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने जो तरीके कार वजा किया, वो इनकी संगदिलाना शैतानी सोच की अक्कास थी। इस तरीके ने आज तक दुनिया को इनके हाथों मुआशी गुलाम बना रखा है। इन्होंने हुक्मरानों को दिए गए कर्जों की वसूली को यकीनी बनाने के लिए वक्त जाया किए बगैर पाबंदी आयद कर दी कि टैक्स की वसूली सिर्फ टेम्पलर्स करेंगे। टैक्स वसूली के अख्तियार ने उनकी ताकत और दौलत में बेपनाह इजाफा कर दिया। अब ना सिर्फ वो पापाइत को दिए जाने वाले अतियात वसूल करते, बल्कि बादशाहों, हुकूमतों की तरफ से टैक्स भी वसूल करते। टेम्पलर्स ने अपनी दौलत और कुव्वत में तेजी से इजाफा किया, यहाँ तक कि अब वो अपने मिशन के तीसरे मरहले का आगाज करने के काबिल हो गए थे। मजहबी और माली हैसियत के इस्तेहकाम के बाद अब इक्तदार और अस्करियत की तरफ उनका सफर शुरू हुआ। इबलीसी सियासत या सहूनी अस्करियत, इसके लिए इन्होंने ये तरीका कार वजा किया और बिलाशुबा इंसानियत का खून बहाने और इंसानियत की रगों से खून चूसने वाले एक तरीका कार को इबलीसी सियासत के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। कि दुनिया में जहां जंग होती, ये जंग में शरीक दोनों फरीकों को काबू में रखते, इनसे फायदा उठाते, और अगर कहीं जंग नहीं हो रही होती तो ये बगावत तख्लीक करते, फिर दोनों फरीकों को असलाह फराम करते। चुनाचा जंग में शरीक दोनों फरीक इनके मकरूज और जेरे असर हो जाते। खोए हुए यरूशलम को वापस लेने और पूरी दुनिया पर गलबा पाने का ये सफाकाना मिशन हर तरह की अखलाकियात और इंसानी रिवायात को पामाल करते हुए जारी था कि यहाँ तक के अक्टूबर की 13 तारीख और जुमे का दिन आ गया। 13 तारीख नाइट टेम्पलर्स की तारीख का सियाह तरीन दिन है, जारी है। 13 तारीख का जुमा, तीसरी और आखिरी किस्त, जुमा 13 अक्टूबर। हुआ यूं कि टेम्पलर्स बरादरी की तरक्की यूरोप के हुक्मरानों और मईशत पर कंट्रोल आम लोगों की नजरों से ओझल रहा। यहाँ तक कि खुद यूरोपीय बादशाह भी एक तवील अरसे तक इस बात को ना समझ सके कि बिरादरी उनके साथ क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। बिलाखिर फ्रांस का बादशाह फिलिप्स चहारुम इस साजिश को समझ गया। वो इनसे अपना और अपनी कौम का पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन चर्च और ईसाइत उसकी राह में हाइल थी। टेम्पलर्स ने ईसाई अवाम को मजहबी हिमायत हासिल कर रखी थी। इनके खिलाफ कार्रवाई आसान ना थी। चर्च चूंकि टेम्पलर्स के साथ था, इसलिए वो इनकी जारादारी ना तोड़ सका। इसने हिकमत से काम करने का फैसला किया। सबसे पहले इसने उस वक्त के टेम्पलर्स के साथ मिले हुए पोप बोनी फेस हश्तुम से जान छुड़ाई और फिर उसके जानशीन बेनी डक्ट या दहोम से छुटकारा हासिल किया। 1305 ईस्वी में बादशाह फिलिप्स ने नए पोप क्लेमेंट पंजुम का तकर्रुर किया। इस मुनसिफ पोप की मदद से बादशाह ने टेम्पलर्स के मामलों की मुकम्मल छानबीन कराई। तहकीकात के नतीजे में जो हकायक सामने आए वो तवक्को से ज्यादा खतरनाक थे। खतरे की संगीनी ने उसे फौरी और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। चुनाचा उसने मुल्क भर में सरकारी अम्माल को सरबमोहर अहकाम भेजे। तरतीब ये बताई गई कि इन अहकाम को हर जगह बयक वक्त यानी जुमा 13 अक्टूबर 1307 ईस्वी की सुबह तुलुए आफ्ताब पर खोला जाना था। इन खुफिया अहकाम के मुताबिक मुल्क भर में इस तंजीम को मुअत्तल करके टेम्पलर्स को गिरफ्तार और उनकी इमलाक को जब्त कर लिया गया। टेम्पलर्स पर तौहीन मसीह बुत परस्ती के इल्जाम आयद किए गए। इन इल्जाम ने पूरे यूरोप में टेम्पलर्स के खिलाफ नफरत और कराहियत पैदा कर दी। हर जगह उन्हें मशकूक करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम साबित होने वालों को फांसी दे दी गई। जमहूरियत का आगाज। पोप क्लीमेंट ने बाइसाप्ता तौर पर 1312 ईस्वी में टेम्पलर्स की तंजीम टेम्पल को कल अदम करार दे दिया। तंजीम के आखिरी ग्रैंड मास्टर जैक्स डी मौलाए को 1314 ईस्वी में धीमी आंच पर रखकर कबाब बना दिया गया। टेम्पलर्स अपने ग्रैंड मास्टर की इस कुर्बानी को आज भी याद रखे हुए हैं और उसकी यादगार को अपनी तकरीब में मजहबी रस्म के तौर पर मुनक्किद करते हैं। जब एक दफा रायामा उनके खिलाफ हो गई और चर्च उनका दुश्मन हो गया तो फिर बिरादरी इन इल्जाम से तंजीम को मजीद तहफ़ देने में नाकाम हो गई। इनकी ज्यादातर इमलाक यूरोप भर में जब्त कर ली गई। बज़ाहिर टेम्पलर्स का खात्मा हो गया लेकिन इन्होंने इस सूरत हाल से एक सबक सीखा और मुस्तकबिल में उस पर अमल किया। एक हाथ में कुव्वत और इक्तदार खतरनाक हो सकता है, चुनाचा उसे तकसीम कर देना चाहिए। इस फैसले ने दुनिया भर में नए तर्ज हुकुमरानी को मुतारिफ करवाया और दुनिया जमहूरियत नामी नए निज़ाम हुकूमत से वाकिफ हुई जो बिरादरी के लिए शिकस्त खा जाने के बाद दोबारा मैदान में आने और खम ठोक कर आने का जरिया साबित हुआ। टेम्पलर्स जेरे जमीन चले गए और अब एक नए दौर का आगाज हुआ, जमहूरियत का आगाज, जो कि बादशाहत का मुतबादल निज़ाम था। बिरादरी ने समझ लिया था कि खुफिया गिरफ्त ही इन जैसी किसी खुफिया तंजीम के लिए ज्यादा मौजू है। ये खुफिया गिरफ्त मौरूसी बादशाहत लेकर तख्त पर आने वाले मुतलकुल अनान बादशाहों की बनिस्बत अवामी नुमाइंदों पर आसानी से कायम की जा सकेगी। जब असम्बलियों में भांत भांत की बोलियां बोलने वाले जमा होंगे तो उनकी बोली लगाना और उनकी बोली को अपनी मर्जी का रुख देना आसान होगा। अवामी नुमाइंदे अपने इंतखाब के लिए हमेशा सरमाए और तशहीर के मोहताज रहते हैं। बिरादरी का सूदी सरमाया और दरोह गो मीडिया नहायत आसानी से इन नुमाइंदों की अवामियत खत्म करके उन्हें बिरादरी का ताबे बना सकता है। फिर जमहूरी फैसलों में इबहाम बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ पता नहीं किसने किस राय के हक में खुफिया वोट डाला। इबहाम जिस कदर ज्यादा होगा उनका तहफ्फुज भी ज्यादा होगा। अगर आपको अपने दुश्मन का इल्म नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आप खुद को इल्जाम देंगे या कहेंगे वक्त ही बुरा चल रहा है? फ्री मेसन की शक्ल में टेम्पलर्स का नया जहूर। फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारुम के दिलेराना इकदाम और हिकमत से भरपूर कार्रवाई ने टेम्पलर्स को उसकी तारीख का सबसे बड़ा धचका लगाया था। ये अधमुए हो गए थे। अगर उनको एक मौका ना मिल गया होता तो उनका खात्मा यकीनी हो जाए और इंसानियत की जान इनसे छूट जाती। वो मौका स्कॉटलैंड के मखसूस हालात की वजह से उनको मिल गया। बच जाने वाले टेम्पलर्स का गिरोह अपनी जान बचाकर स्कॉटलैंड पहुंचने में कामयाब हो गया। स्कॉटलैंड काफी अरसे से आज़ादी की जंग लड़ रहा था। टेम्पलर्स के आने से स्कॉटलैंड के बादशाह वक्त रॉबर्ट ब्रूस को हथियार मिल गया। यह हथियार लड़ने और कर्जे देकर 200 साल जंगी तजुर्बा था जो इन्होंने मुसलमानों की अजीम अफवाज के खिलाफ लड़ाई में हासिल किया। 1314 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस की इत्तेहादी फौजों ने 25,000 अंग्रेजी फौज को शर्मनाक शिकस्त से दोचार किया। इस शिकस्त से टेम्पलर्स की नई जिंदगी ने जन्म लिया। टेम्पलर्स अपने आप को पस्तियों से निकालने में कामयाब हुए और इस मर्तबा ज्यादा शान के साथ अब वो आजाद स्कॉटलैंड के बादशाह को कंट्रोल कर रहे थे। 1603 ईस्वी में क्वीन एलिजबेथ अव्वल के मौत के बाद स्कॉटलैंड का बादशाह जेम्स पंजुम बरतानिया का भी बादशाह बन गया। यानी इस नई वसी रियासत का निज़ाम टेम्पलर्स के हाथ में आ गया। यूं पूरे बरतानिया पर उनका तसल्लुत कायम हो गया। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। टेम्पलर्स को नया ठिकाना मिल गया लेकिन वो इंतहाई मोहताद थे। तकरीबन 100 साल तक टेम्पलर्स बिल्कुल पसे पर्दा चले गए, अपने काम कम कर दिए ताकि लोग उनको भूल जाएं, मगर उन्होंने बरतानिया पर अपनी गिरफ्त कम नहीं की। बड़े बड़े ओहदों के हुसूल में सरगम गर्म रहे, यहाँ तक कि उनकी ताकत में बेपनाह इजाफा होता चला गया। 1717 ईस्वी में टेम्पलर्स यूरोप में फिर से उभरते हैं। इस मरतबा तादाद और ताकत दोनों में हम पल्ला हैं। ये नई शनाख्त उनकी माजी की शोहरत से ज्यादा ताकतवर और मौसर है और ये शनाख्त उनको बरतानिया की बादशाहत दे रही है। अपने खुफिया हथकंडों पर पर्दा डालने के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपने नाम टेम्पलर्स को खत्म कर दें। अब जो नाम उन्होंने अपने आप को मुतारिफ कराने के लिए रखा वो फ्री मैसन था। इस लफ्ज को बहुत से लोग जानते थे मगर इसका मफहूम कम लोग जानते थे। टेम्पलर्स के नए नाम फ्रीमेसन ग्रुप का बरतानवी शाही खानदान में से पहला मेंबर प्रिंस ऑफ दी वेल्स फ्रेडरिक था। बाद में आने वालों में प्रिंस फिलिप, एडिनबरा का तो योर्क और मलका एलिजाबेथ दोनों बरतानिया शामिल हैं। बरतानवी जमहूरी हुक्मरानों में वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और वजीर खारजा जेम्स बिलफोर्ड का नाम नुमाया है। बरतानवी लॉर्ड्स की एक तवील फहरिस्त है जो बिरादरी का रुकन बनकर दज्जाली नफरत अंगेज रियासत के लिए दानिस्ता या ना दानिस्ता बुनियाद रखते गए। इज्तमाई आबादी से इज्तमाई बर्बादी तक इस नई शिनाख्त और गिरोह में शामिल होने वाले लोग मुआशरे के सरबर आवरदा लोग थे। मुआशरे में उनकी इज्जत और मकाम ने फ्रीमैसन की कद्र कीमत में इजाफा किया और वो इस काबिल होते चले गए कि यरूशलम वापसी के सफर का फिर से आगाज करें और मुस्तकबिल की दुनिया के अजीम तरीन सानहे तीसरी जंग अजीम की बुनियाद रख सकें। बरतानवी शाही खानदान में असर और रसूख हासिल करने, बरतानवी जमहूरी हुक्मरानों को बस में करने और यहूदी सरमाए से बरतानवी मकरूस रियासत का भरम रखने के अवज कदीम टेम्पलर्स और जदीद फ्रीमेसन ने यहूद की दज्जाली बिरादरी के लिए सल्तनत उज़्मा बरतानिया और उसके शाही ताज को बेदरेग इस्तेमाल किया। अंग्रेज जनरल एनन बी के हाथों फलस्तीन को खिलाफत उस्मानिया से छीनने से लेकर इसराइल के क्याम के ऐलान तक बरतानिया को इस्तेमाल करने के हवाले से फ्रीमेसन की कामयाबियों के दावे की तवील तारीख है। यहूदी ज़ोमा अर्ज़ मुकद्दस में दज्जाली रियासत के क्याम को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे इस रियासत को अजीम से अजीम तर बनाने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं वैसे वैसे वो अपने मंतकी अंजाम के करीब होते चले जा रहे हैं। इसराइल की नौ तामीर शुदा बस्तियों में उनकी इज्तमाई आबादी उनकी इंशाल्लाह इज्तमाई बर्बादी पर खत्म होगी। उनकी ये बर्बादी सिर्फ दज्जाली रियासत का ही अख्तिताम न होगा बल्कि दुनिया से शर और फसाद के मुकम्मल खात्मे की नवीद भी होगा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस जमाने में जिंदा होंगे और तौफीक इलाही से आलमी दज्जाली रियासत के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए आलमी इस्लामी खिलाफत कायम करेंगे, ऐसी खिलाफत जो कायनात में बसने वाले हर जी रूह के लिए साया रहमत होगी। रहमानी खिलाफत से दज्जाली रियासत तक। बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की दुनिया का वो मुल्क है जो दुनिया के दो मशहूर बर्रे आजमों के संगम पर वाकई है। ये दोनों बर्रे आजम रंग व नस्ल के एतबार से ही नहीं मजहब व नजरिए के एतबार से भी एक दूसरे के मुतजाद और बाहमी तारीख जदलियत के हामी रहे हैं। इसका जुग्राफियाई महल वकूँ ऐसा है कि यहाँ से ईसाइत के गहवारे बर्रे आजम यूरोप में दाखिले का रास्ता खुलता है। इस रास्ते के नुक्कड़ पर ईसाइत का रूहानी मरकज और मजबूत अस्करी किला कुस्तुनतुनिया था, इसलिए उसके फातिहीन के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम बशारतें सुनाई थी। इस शहर की फतह का वाकया जितना अजीम उशान था इसके सुकूत और खिलाफत उस्मानिया के इन्हदाम का हादसा उतना ही दिलदोज और अनधोनाक था। 1288 ईस्वी के एक मुबारक दिन में यहाँ रहमानी रियासत खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी और 1924 ईस्वी के एक मुन्ना मुबारक दिन में खिलाफत के सकूत और दज्जाली रियासत के रास्ते में हाइल रुकावट के खात्मे का ऐलान हुआ। आइए इस आगाज और इख्तिताम इस तजाद और तकाबुल पर एक नज़र डालते हैं कि मुस्तकबिल करीब में फिर यही कहानी माकूस अंदाज में किरदार के अख्तलाफ के साथ दोहराई जाने वाली है। मौजूदा जमहूरिया खिलाफत उस्मानिया 1288 ईस्वी से 1924 ईस्वी की जानशीन रियासत है। खिलाफत उस्मानिया इस रूए ज़मीन पर आखिरी खिलाफत थी। इसके सुकूत से इस ज़मीन पर इलाही रियासत और इलाही निज़ाम वाली मुमलिकत का अख्तिताम हुआ और दज्जाली रियासत के क़याम का आगाज़ हुआ। ये आगाज़ तकमील से पहले इंशाअल्लाह ताला अख्तिताम को पहुँचेगा और फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रब बंदे पूरी दुनिया में आलमी इलाही खिलाफत कायम करेंगे जो सही मानों में रहमानी रियासत होगी। खिलाफत उस्मानिया खिलाफत राशदा 232 ईस्वी से 661 ईस्वी, खिलाफत बनो उमैया मशरक 661 ईस्वी से 750 ईस्वी, खिलाफत बनो उमैया मगरिब 756 ईस्वी से 1492 ईस्वी और खिलाफत अब्बासिया 750 ईस्वी से 1285 ईस्वी के बाद कायम हुई थी। खिलाफत उस्मानिया को ये मुनफरिद एजाज मिला कि उसने 1453 में कुस्तुनतुनिया, सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत और ईसाइत का दिल को फतह किया और इस्लामी सल्तनत की सरहदें यूरोप के अहम इलाकों तक फैला दी। सल्तनत उस्मानिया के उरूज के जमाने में इसमें मौजूदा तुर्की के अलावा अफ्रीका के बाज इलाके, मिस्र, तुराबलस, जजीरा नुमाय अरब यानी हरमैन और हिजाज, यूरोप में से ऑस्ट्रिया और हंगरी तक के इलाके और इलाके बलकान का बेशतर हिस्सा, सर्बिया, क्रोशनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मकदूनिया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, बल्गारिया, रोमानिया और यूनान शामिल था। गोया वो तीन बड़े आजमों, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अहम खित्तों पर बैक वक्त हुक्मरान थी। इस कमाल के बाद जवाल ने शामत अमाल के नाम से हमारी राह देख ली। अब हम जवाल के आखिरी हद से गुजर रहे हैं और जब अपने आंसुओं और खून से अपने गुनाहों को धो डालेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा उरूज हमारा मुकद्दर होगा और वो ऐसा ताबनाक होगा कि तारीख इंसानी ने इसकी मिसाल ना देखी होगी। यूरोपी ममालिक इस अजीम इस्लामी सल्तनत को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जो उनके कल्ब में हिलाल वाला परचम बुलंद किए हुए थी। इनकी हमदर्दियां बलकान के ईसाइयों के साथ थीं और वो उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाते रहते थे। यूरोप ने यहाँ लिसानियत और कौमियत का आजमूदा हथियार इस्तेमाल किया। दानिश्वरों और शायरों ने पहले यूनानियों को इनकी मादी की याद दिलाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर आमादा किया। यहीं से मशरिकी मसला, ईस्टर्न क्वेश्चन पैदा हुआ और यूरोपी ममालिक की मुदाखलत से यूनान मार्च 1829 ईस्वी में आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। यूनान के बाद दूसरी यूरोपीय रियासतें भी आज़ादी के लिए हाथ पांव मारने लगीं। साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ यूरोपीय ताकतों और सहूनी मनसूबा साजों की मुसलसल रेशा दवानियों के नतीजे में कई दूसरे अफ्रीकी और यूरोपीय इलाके तुर्कों के कब्जे से निकलने लगे। 1830 ईस्वी में फ्रांस ने अलजजायर पर और 1882 ईस्वी में बरतानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इटली ने 1911 ईस्वी में त्रावलस, मौजूदा लीबिया का इलाका छीन लिया। इसके बाद मगरबी मौरखीन ने तुर्की का हौसला पस्त करने के लिए मर्द बीमार की इस्तलाह ईजाद कर ली। इस जमाने में सल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी हालत बड़ी नाजुक थी। फ्री मैसन हर तरफ सरगर्म थी। कदामत पसंद और तरक्की पसंद सियासतदान एक दूसरे से दस्तोगिरेबां थे। अप्रैल 1909 ईस्वी में फ्री मैसन के तैयार करदा तरक्की पसंद गिरोह, बागी गिरोह ने सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त व ताज से माजूर करके सुल्तान मोहम्मद खामिस को तख्त खिलाफत पर बिठा दिया। इसकी पोजीशन शाह शतरंज से ज्यादा ना थी। अक्टूबर 1912 ईस्वी में रूस के उकसाने पर बलकानी रियासतों ने तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में तुर्की को बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। उसके मुतअद्दिद इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा जमा कर लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म कर दिया। 30 मई 1913 ईस्वी को लंदन में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई, लेकिन इस सुलहनामे की रूह से सल्तनत उस्मानिया अपने कई इलाकों और जजीरों की मिल्कियत से दस्तबरदार हो गई। 28 जुलाई 1914 को पहली आलमी जंग शुरू हुई। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया का हलीफ बन गया। दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका थे। तुर्की को उम्मीद थी कि फतह के बाद जर्मन हुकूमत रूसी तुर्किस्तान, मिस्र, लीबिया, ट्यूनस और अलजजायर को इत्तेहादी ताकतों से छीनकर तुर्की के हवाले कर देगी। उसे ये भी तवक्को थी कि मगरबी मकबूजात के मुसलमान तुर्की के हक में बगावत करेंगे और सल्तनत के अरब मुसलमानों तुर्कों से पूरा पूरा ताउन करेंगे, लेकिन तुर्की की ये ख्वाहिशात पूरी ना हुई। जंग शुरू होते ही मशहूर अंग्रेज शातिर कर्नल लॉर्ड लॉरेंस हिजाज मुकद्दस सऊदी अरब पहुंच गया और हुसैन शरीफ मक्का और उसके बेटों और अमीर फैसल और अमीर अब्दुल्ला को तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाने लगा। बरतानवी हुकूमत ने शरीफ मक्का से वादा किया कि तुर्की में खिलाफत के खात्मे के बाद उसे खलीफा तस्लीम कर लेगी और उसके फर्जंद फैसल को शाह शाम का और अब्दुल्ला को फलस्तीन और उर्दुन का बादशाह बना देगी, जबकि अंग्रेज ने किसी को खलीफा तस्लीम करना था ना खिलाफत के इदारे को बाकी छोड़ना था। इसे तो इस्लाम की सरबुलंदी की हर अलामत से दुश्मनी थी। एक अंग्रेजी मुसन्निफा ने अपनी किताब जजीरतुल अरब में साफ साफ लफ्जों में लिखा है, बरतानिया और इस्लाम दोनों इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। उसका कहना था, दो कुवतें दुनिया में बरतरी के लिए कोशा हैं, एक अंग्रेज और दूसरी मुसलमान। वो दो जबानें दुनिया में छाना चाहती हैं, अंग्रेजी और अरबी, और इन दो में से एक को फना होना चाहिए। इससे मालूम होता है कि अरबी की तरवीज कितनी जरूरी और उसके जरिए इस्लामियत की तबलीग कितनी मुफीद है। इसने लिखा है, जब तक इस्लाम की मरकजियत ना खत्म हो और जजीरतुल अरब इसकी मरकजियत से अलहदा करके टुकड़े टुकड़े ना कर दिया जाए, इस्लाम की ताकत का खात्मा नहीं हो सकता। इसके बाद में दुनिया को ये भी बताना था, अंग्रेजी कीमियावी तरीकों से अपने चमड़े गंदुमी रंगत में रंग कर खिलाफत के जेर इंतजाम इलाके के हदूद में वहां के मदरसों और मकानों में रहते थे, ताकि अरबों की कमजोरियों को मालूम कर सकें और उनको तुर्कों के खिलाफ उकसा सकें। अरसे की मुशक्कत, रियाजत और कुर्बानी का नतीजा था कि मशहूर फ्रीमेसन एजेंट कर्नल लॉरेंस का वो मवाद मिला कि जिससे वो अरबी लिबास पहनकर जंगे अजीम अव्वल 1914-1919 के दौरान अरबों से तुर्कों को कत्ल कराता था और हर ग्रह के कत्ल पर इनाम मुकर्रर कर रखा था। खुद कर्नल लॉरेंस ने जो तकालीफ बर्दाश्त की और जिस तरह जान पर खेल कर यह तमाशा किया, वो एक अजीब दास्तान थी। वस्त जून 1916 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने नादानी का मुजाहरा करते हुए हुसैन शरीफ मक्का की सरबराही में अपने इक्तदार आला और खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी और अंग्रेजों के मदद से हिजाज मुकद्दस में अपनी हुकूमत कायम कर ली। बरतानिया की ये हिकमत अमली दिलचस्प होने के साथ साथ सबक आमोज भी थी, जिसके जरिए उसने मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस बगावत से कबल जंग अजीम में तुर्कों ने जिस जांबाजी और जवांमर्दी का सबूत दिया, वो इनको शुजाआना कार्रवाइयों में अदीमुल मिसाल है। लेकिन अरबों की नासमझी और फ्रीमेसन के हाथों बगावत से तुर्कों को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते तमाम अरब इलाके, इराक, मिस्र, शाम, उर्दुन और फलस्तीन इत्तहादियों के जेर तसल्लुत आ गए। 30 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मिडलॉस के मुकाम पर इल्तवाई जंग के सिलसिले में बातचीत का आगाज हुआ। बिलाखिर 14 मई 1920 को तुर्की के साथ नामनेहाद सुलह की यकतरफा शराइत मुहाइदा सियोरे के नाम से मुश्तहिर कर दी गई। इस जानिबदाराना सुलहनामे की रूह से तुर्की को तमाम अरब इलाकों से महरूम कर दिया गया। हिजाज मुकद्दस में शरीफ मक्का की खुद मुख्तार हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया। दर्रा दानियाल और तमाम दीगर अहम दर्रे बैनुल अक्वामी कंट्रोल में दे दिए गए। मुख्तसर ये कि इत्तहादियों ने तुर्कों की कौमी आजादी को खत्म करने का तहिया कर लिया था और तुर्की इतना बेबस था कि उसने 10 अगस्त 1920 को इस मुआहदे की तौसीक कर दी। दज्जाली क़ुव्वतों को खतरा था कि ईसाइयत के दिल में खिलाफत कायम करने वाली इस रियासत के आसारे कदीमा में भी इतना दमखम है कि ये फिर से निशाते सानिया की तहरीक शुरू कर सकती है। इसके सद्देबाप के लिए फौज को जमहूरियत का निगरान बनाया गया। मुआसिर दुनिया में तुर्की के सियासी निजाम की ये एक मुनफरिद खसूसियत है कि इसमें सियासी इंतशार और जमहूरी हंगामों पर काबू पाने के लिए मुसल्ला अफवाज को मुस्तकिल तौर पर आईनी किरदार दिया गया है। तुर्की की फौज ना सिर्फ मुल्की सलामत और सालमियत के एग्जामिन, बल्कि कमाल अतातुर्क के नाम नेहाद इस्लाहात और मस्ख शुदा तहजीबी विरजे की भी मुहाफिज है। चुनाचा फौज की पेशावराना तरबियत मखसूस गैर मजहबी सेकुलर माहौल में की जाती है, जिसके नतीजे में फौज का मजमूई मिजाज सेकुलर हो गया है और वो अतातुर्क के मगरबी तर्ज की असलाहत को हकीकी रूह के मुताबिक नाफिज करने के लिए कोशां रहती है। इस मकसद के लिए हुसूल के लिए फौज को 1960 और 1980 ईस्वी में सिविल हुकूमत को बरतरफ करना पड़ा। इलावाजी 1961 ईस्वी और 1982 ईस्वी के आईन के तहत कौमी सलामती कौंसिल की तश्कील भी इसी सिलसिले की कड़ी है। फौजी सर्विस को कौमी खिदमत करार देकर हर तुर्क शहरी पर 18 माह के अरसे पर मुहित लाजमी फौजी तरबियत की पाबंदी लगाई गई थी। इस तरह हर शहरी कुछ अरसा फौज से मुंसलिक रहता है। इस इकदाम का मकसद यह है कि हर तुर्की शहरी सेकुलर मिजाज अपनाए और सेकुलर निजाम के मुहाफिज फौज से जिंदगी भर हम आहंग रहे। तुर्की के सियासी निजाम में फौज का आईनी किरदार मुतय्यन करने से सिविल मामलात में फौज का असर और रसूख बहुत बढ़ गया है। उससे एक तरफ फौज की पेशावराना कारकर्दगी मुतासिर हुई है तो दूसरी तरफ फौज का सेकुलर मिजाज अवामी ख्वाहिशात के सामने रुकावट बन गया है। अब ये फौज पर मुनहसिर है कि वो जिसकी चाहे उसकी हिमायत करे, वह अवाम उसे पसंद करे या ना करे। तुर्की के सियासी निजाम में फौज का आईनी किरदार फ्री मैसन से जहन लेने वाले फौजी हुक्मरानों के जहन ही की एक तरह है। तुर्की में इसे बदनाम जमाना फ्री मैसन जनरल जमाल गर्सल ने मुतारिफ कराया था। तुर्की में फौज के आईनी किरदार के तायुन के बाद फौज को अब मार्शल लॉ लगाने की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि वो खुद ही बादशाहगर बन गई है और वो लाजमी तौर पर उस्मानी सलातीन की जगह लेने के लिए ऐसे बादशाहों का इंतखाब करती है जो किसी हालत में तुर्की को, जो दुनिया के अहम तरीन जुग्राफियाई खत्ते में वाक़े है, इस्लाम की तरफ, अल्लाह और उसके दीन की तरफ यानी रहमानी रियासत वाले निज़ाम की तरफ ना जाने दे। ये सारा कारनामा अंजाम अंजाम देने के लिए सहूनी ताकतों ने तुर्कों के जिस बदतरीन दुश्मन का इंतखाब किया उसे अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप का लकब दिया, जबकि वो कौम यहूद का अदना गुलाम था। जी हाँ, वो कोई और नहीं, फ्री मैसन का तराशा हुआ फन पारा मुस्तफा कमाल था। मुस्तफा कमाल का वालिद सालोनी का यूरोपी तुर्की में चुंगी का मुहर्रिर था, बाद असा लकड़ी का कारोबार करने लगा। मुस्तफा कमाल अभी कमसिन ही था कि वालिद का साया सर से उठ गया। वालदा बहुत दीनदार लेकिन निहायत गरीब खातून थी। उसने मुस्तफा कमाल को एक दीनी मदरसे में दाखिल करा दिया, लेकिन मुस्तफा कमाल को बचपन ही से फौजी अफसर बनने का शौक था। चुनाचा चंद बरसों बाद वो खुद एक मिलिट्री स्कूल में दाखिल हो गया। स्कूल की तालीम करने के बाद कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के मिलिट्री कॉलेज में चला गया और 1904 ईस्वी में कॉलेज से लेफ्टिनेंट बनकर निकला। फौजी मुलाजमत के सिलसिले में इसको शाम, फलस्तीन, मिस्र और अल्बानिया वगैरह में घूमने फिरने का मौका मिला। यहाँ वो बिरादरी के बिग मास्टर्स की नजर में आ गया। चुनाचा इसके अंजुमन अंजुमन इत्तेहाद और तरक्की के इनकलाब पसंद मिंबरों से ताल्लुकात कायम हो गए। ये अंजुमन, जैसा कि नाम से जाहिर है, सहूनी दिमागों ने तख्लीक की थी। नौजवान और तालीम याफ्ता तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी से निजात हासिल करने के लिए कायम कर रखी थी। अप्रैल 1909 में तुर्की फौज ने अलम बगावत बुलंद किया और मामूली कशमकश के बाद सुल्तान को तख्त से उतार दिया गया। मुस्तफा कमाल ने इक्तदार में आते ही तुर्की को तरक्की पसंद मुल्क बनाने के लिए हर शोबे जिंदगी में मगरबी तर्ज की जदीद असलाहत राइज की। इस शख्स ने 6 बरसों के मुख्तसर अरसे में फ्री मैसन दानिश्वरों की मदद से तुर्की के समाजी, कानूनी, तालीमी और सियासी निजाम को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अतातुर्क की असलाहत की बुनियाद उसकी दर्ज झेल 6 तागुती उसूल थे, जिनमें से हर एक असलाह पुकार पुकार कर अपने वजह करने वाले दिमागों की निशानदही कर रही थी कि वो कौन थे और क्या करना चाहते थे। वो 6 पुरफरेब उसूल ये थे। नंबर 1, जमहूरियत परस्ती। नंबर 2, कौम परस्ती। नंबर 3, अवामियत पसंदी। नंबर 4, लादीनियत। नंबर 5, इस्लाह परस्ती। नंबर 6, मुमलिकती इश्तराकियत। यहूदी गुमाश्ते मुस्तफा कमाल ने तुर्की को यहूदी सपनों के मुताबिक मगरबियत के रंग में रंगने, रहमानी निजाम के खात्मे और दज्जाली निजाम की सरबुलंदी के लिए 4 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत का बाबरकत ओहदा, जो मुसलमानों के लिए ठंडा साया और रहमत का सायबान था, खत्म कर दिया। इसके 1 माह बाद कौमी असम्बली ने दीवानी मामलात में तमाम शरई अदालतों के अख्तियार को कुलियतन खत्म कर दिया। इसके साथ ही वजारत औकाफ और मजहबी तालीमी दस्तगाहों को खत्म कर दिया गया। उल्मा और तलबा को मुंतशिर करते हुए मदरसों और खानकाहों को बंद कर दिया गया। शेखुल इस्लाम का ओहदा पहले ही 1922 ईस्वी में खत्म किया जा चुका था। मजहबी मामलात से निपटने के लिए इख्तियारात से महरूम और इस्लामी रूह से आरी मजहबी उमूर का बोर्ड और मतरू का इमारात का बोर्ड कायम किया गया। अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की का नया आईन मंजूर किया गया। आईन की दफा दो के तहत तुर्की को एक नेशनलिस्ट रिपब्लिक, सेकुलर और सोशल रियासत करार दिया गया। दरे इब्तदारे आला का सर चश्मा तुर्क कौम को माना गया। इस तरह अल्लाह ताला की हाकमियत के मुकाबले में इंसान को हाकमियत का इख्तियार दे दिया गया, जो दूसरे इंसानों के हाथों में खेलते हुए तक ये तक नहीं समझता कि वो खिलाड़ी नहीं, खिलौना है। तुर्की में सेकुलर तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए शरई कवानीन की जगह यूरोप के निजाम हाय कानून को अपनाया गया। स्विट्जरलैंड के नमूने पर सिविल जाब्ता कवानीन, अतालवी नमूने पर फौजदारी जाब्ता कवानीन और जर्मन नमूने पर तजारती कवानीन राइज किए गए। मजहबी असलाहत के नाम नेहाद उनवान देकर सूफिया कराम के हलकों में और उनकी खानकाहों पर पाबंदी लगा दी गई। रूमी और हिजरी कैलेंडर की जगह ईस्वी कैलेंडर राइज किया गया। पर्दे और तादाद अज़दवाज, एक से ज्यादा शादियों को कानूनन ममनू कर दिया गया। औरतों को मर्दों के मुसावी हुकूक दिए गए, जो महज ख्याली और फर्जी थे। इन पर तमाम मुलाजमतों के दरवाजे खोल दिए गए, सिर्फ घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। 1934 ईस्वी में एक आईनी तरमीम के जरिए औरतों को राय दही का हक दिया गया और उसके फौरन बाद बहुत सी औरतें असेंबली की मेंबर मुंतखब हुई। तुर्क कौम परस्त तुर्कियत के जज्बे को उभारने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। मसलन तुर्की जबान से अरबी और फारसी के हरूफ को खारिज कर दिया गया और उसके लिए अरबी रस्म अल-ख़त के बजाय लातीनी रस्म अल-ख़त इख्तियार किया गया। हुकूमत ने तुर्क जबान को तरक्की देने के लिए जबरदस्त तहरीक चलाई और इसकी तरक्की और तरवीज का नया दौर शुरू हुआ। मस्जिदों और दीगर मजहबी इदारों में अरबी जबान का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया, हत्ता कि अजान, नमाज और कुरान की तिलावत के लिए भी अरबी जबान का इस्तेमाल नाजायज ठहराया गया। इन जुग्राफियाई नामों को, जिनसे बैरूनी अल्फाज की बू या खुशबू आती थी, खालिस तुर्की नामों में तब्दील कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तंबोल रखा गया। एड्रिया नोपल को अदाना और समरना को अजमीर में तब्दील किया गया। लोगों को हुक्म दिया गया कि वो अपने नाम खालिस तुर्की में रखें। चुनाचा असमत पाशा ने असमत अनूनू और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मुस्तफ़ा कमाल का नाम इख्तियार किया। गाजी, पाशा और बे के पुराने खिताबात, जो दौरे खिलाफत की यादगार थे, खत्म कर दिए गए। इस्तांबुल के बजाय अनकरा को दारुल हुकूमत करार दिया गया। नए दारुल हुकूमत में जदीद तर्ज की इमारतें तामीर की गईं और शहर के नए हिस्से में कोई मस्जिद तामीर नहीं होने दी गई। यूरोपीय कौमों को अंधी तकलीद में मुल्क भर में शबीना क्लबों, थिएटरों और नाच घरों का जाल बिछा दिया गया। इस तरह इस्लामी मुआशरे की जगह दज्जाली मुआशरे ने ले ली। जो कौम दुनिया की मजबूत तरीन नजरिए की तर्जुमान और आलम इस्लाम की नुमाइंदा थी, वो कौमियत के नाम पर ऐसी पस्ती में चली गई कि खुद उसे भी शऊर नहीं रहा कि उससे क्या छीन कर क्या थमा दिया गया है। पूरी इस्लामी दुनिया तुर्कों को अपना कायद और महबूब मानती थी। इस्लामी अख़ुव्वत की जगह कौमियत के चक्कर में पड़ते ही तुर्की दुनिया की नजरों से गिर गया। पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्कों के साथ जीने और उनके साथ मरने पर फख्र करते थे। खिलाफत की जगह जमहूरियत के आते ही तुर्कों से ये एजाज जाता रहा। हमारे यहाँ भी इस्लामियत की जगह पाकिस्तानियत ले रही है, जबकि जिन लोगों ने ये नारा सबसे पहले पाकिस्तान लगाया था, खुद उनमें पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज कभी ना थी और ना आज है। एक अंग्रेज मुदब्बिर और सियासतदान ग्लेडस्टोन ने कौम परस्ती में मुब्तिला तुर्क कौम की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए लिखा है, इस मुल्क या कौम की सियाह बख्ती का कोई अंदाजा नहीं कर सकता जो एकदम अपने माजी की रिवायात से अपना ताल्लुक मुनक़ता कर ले। तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान इसी गलती का शिकार हुए। मिस्र ने भी यूरोप की अंधी तकलीद करते हुए मिस्री कौमियत का नारा लगाया, मगर हर हालत में इन इस्लामी ममालिक को खौफनाक नतीजे भुगतने पड़े। तरक्की का राज लिबास में नहीं होता। पांच कुलियों वाली टोपी की जगह अंग्रेजी हेड सर पर रख लेने से अंग्रेज की चुस्ती, फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की सिफात रासिख नहीं हो जाती। तरक्की का राज पाकीजा अखलाक, फौजी तरबियत और किसी मुतहरिक नजरिए को अपनाने में होता है। इस राज को अपनी बसीरत के फुकदान के बायस अमानुल्ला खान, रजा शाह पहलवी और मुस्तफ़ा कमाल ना समझ सके। اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے عالمی صہیونیت جو اسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا چاہتی ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماء اور صوفیہ کی زیر سرپرستی چل رہی ہے، اور جب آخری دنوں میں آخری مارکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا یورپ کے اس سنگم یعنی ارض اسلام اور ارض عیسائیت کے اس ملاپی نقطے میں لڑا جائے گا، تو ترکی کے مسلمان انشاءاللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس خطے میں عیسائی اتحادیوں کو قلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گے، اور جب عیسائی ادموئے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کا سب سے بڑا عالم بردار دجال اکبر عیسائیوں کو شکست خوردہ اور مسلمانوں کو تھکا ماندہ دیکھ کر خروج کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں اور رحمانی مجاہرین کے درمیان فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہو جائے گا۔ اہل حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شمار آزمائشوں کے باوجود استقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ ان کے مجاہدے و جہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاقوتی قوتوں کے منصوبوں میں پلتا دجالی ریاست کا خواب ایسا چکناچور ہوگا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے دماغ سے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا، اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو سے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا دمکتا سورج برآمد ہوگا، جس سے پھوٹنے والی امن اور خوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کریں گی انشاءاللہ۔ پارٹ ون یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔